गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस कलयुग से पहले मानव शिक्षित नहीं था और बहुत अच्छा जीवन निर्वाह कर रही थी। अब शिक्षित है लेकिन चैन किसी को नहीं, माया की अवस इतनी बढ़ गई इसका कोई अंत नहीं रहा। और माया इकट्ठा करने के लिए कहां तक सत्र गिर सकता है जीव के करैक्टर का, इसका भी कोई पैमाना नहीं रहा। शर्म लाद रही नहीं, न्याय रहा नहीं। गांव में पंचायत न्याय कर दिया करती, इतना अच्छा न्याय कर देते थे वो पुण्यात्मा निष्पक्ष भाव से, और गांव में एक शांति बनी रहती थी। नगर में ऐसे ही होता था। तो कहने का भाव ये है इस दास का कि जो अब ये शिक्षा हमें प्राप्त हुई है ये हमारी विनाशक है। परमाणु बम बना लिए, आकाश में उड़ने की प्रवृत्ति होगी, जहाज बना दिए, धक्के खाते अंडे बता इस जहाज जाम के कला टूट गया। जो संसारिक काल प्रेरणा से जो हमारी सोच है उसके आधार से तो बेशक मानव ने कितनी प्रोग्रेस कर ली हो, परंतु मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें ये मानस हो चुका है। क्योंकि अब नास्तिकता चरम सीमा पर जाने वाली है, जैसे पूरा चीन राष्ट्र नास्तिक हो चुका है। और यो संयुक्त राष्ट्र जिसको, और ये रूस वगैरह इसका पूरा का पूरा उसका ग्रुप, वो नास्तिक हो गया। इसका कारण क्या है कि परमात्मा की साधना ना करने से, सत साधना ना मिलने से मनुष्य को परमात्मा से लाभ मिलना बंद हो गया, जिस कारण से उसने मान लिया प्रभु है ही नहीं। और इसका मूल कारण है ये नकली गुरु, ये झूठे गुरु, झूठे आचार्य, जिनको कह कह का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का, और ये गुरु बने बैठे हैं, जनता का नाश कर दिया, भक्तों को इनको बर्बाद कर दिया। तो कहने का भाव यह है कि भले ही हमने ये सोच लिया हो कि मानव ने बहुत तरक्की कर ली, ये खाक तरक्की कर ली, दो वर्ष वर्षा ना हो परमात्मा दया ना करें, ये जहाज ऋण के हेलीकॉप्टर, ये कंप्यूटर है, ये यही खड़े पड़े पड़े जर लग गए इनमें, कोई इनको यूज कर लिया नहीं पावे, तो हमारी यह भूल है। इस अध्यात्म ज्ञान से ये भूल समाप्त होगी। तो उद्देश्य ये है दास का कहने का कि जो शिक्षा परमात्मा ने ये देनी पड़ी अब नहीं, इस शिक्षा का अभी तक परमात्मा ने प्रचार नहीं होने दिया कि पहले से ही नास्तिक हो जाते ये लोग। अब 50% आबादी मनुष्य जीवन मानव आस्तिक रह गया है, और वो पिछले संस्कार वश ही परमात्मा की चाह में भटक रहा है। उसको सही दिशा ना मिलने से ये काल के दूत ऋषि महर्षि नकली गुरु जिनको अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इनके जाकर फंस जाते, और वहां से भी अब वो छिक चुके हैं, वहां से भी वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि परमात्मा से लाभ उनको मिला नहीं और वहां भी अब नास्तिकता पनपने लगी है। अब ये क्रिटिकल स्टेज आ रही है मानव की बिगड़ने और बढ़ने की। एक बार ये दास पुणे गया था, हमारा एक सेवक है, तो वापस जहाज से आ रहे थे हम दो जने। जो ही हवाई जहाज स्टार्ट हुआ, हमारा स्वाभाविक नियम है प्रभु का उनके साधना में, जब भी हम सफर घर से निकलते हैं या कोई सफर गाड़ी में करते हैं या वैसे पैदल चलते हैं या किसी जैसे यान में चले, तो हमने जो ही वायुयान फ्लाइट करने लगे हमने अपना मंगलाचरण शुरू किया। उसी सीट पर तीसरा और बैठा था, वो जब हमने वो अपना मंगलाचरण बोल लिया, वो बाबूजी कहता है आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमारी मंगल कामना कर रहे थे कि यात्रा सफल हो। अब हमने कोई खास जवाब नहीं दिया, माई से ने कहूं कुछ गर्दन सी हिलाकर हम मैं चुप हो गया। अरे वाह, अब 20वीं सदी में 21वीं सदी में और ऐसे विचारों के लोग शेष हैं, कहीं भगवान नहीं है, आकाश तक ढूंढ लिया, सब तक खोज मार कर ली है, कहीं भगवान नहीं। मगवा देख बुद्धू आदमी, इसको गुण के समझाओ बताए दो, सुने नहीं, क्योंकि इसकी बुद्धि विपरीत फिट होगी। तो ऐसी स्थिति आ गई इस शिक्षा से, लेकिन ये शिक्षा अब अनिवार्य थी। अब इस भूल को मिटा दिया जाएगा, जो भूल हमारे लगा दी इस शिक्षा ने, जिसको विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान होता है, विज्ञान का अर्थ भिन्न ज्ञान भी होता है। तो ये तत्व ज्ञान भी विज्ञान है, जिस विज्ञान ने हमारे को बर्बाद कर दिया, अब ये विज्ञान, ये तत्व ज्ञान हमें फिर से आबाद कर देगा। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्म दास तो लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान की तो बार ना बताना। परमेश्वर ने अपनी वाणी में लिखा है, कबीर सागर में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में, कि 33 अरब वाणी हम बाखा, यानी 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। अब 33 अरब वाणी बोल दी परमात्मा ने, 33 अरब, और वेदों में तो कुछ 2000 मंत्र भी को ना, और उस परमेश्वर ने कहा 33 अरब मंत्र श्लोक बोल दिए हमने, वो कुछ एक संग्रह किए गए हैं, और कहते हैं मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो मूल ज्ञान अब प्रकट करना था परमात्मा ने, अब वो प्रकट हो रहा है। सन 1947 से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, उसी समय से समझ लो या पिछली पीढ़ी यानी दूसरा मध्य का चरण शुरू हो गया। प्रथम चरण में परमात्मा आए थे और मगर से सहशरीर चले गए थे। मगर नगर से, एक नगर है, एक छोटा सा कस्बा है मगर, गोरखपुर के पास, वहां से परमात्मा सहशरीर चले गए थे और हजारों की संख्या में वहां दर्शक उपस्थित थे, जिसमें वीरदेव सिंह बघेल, काशी का नरेश और उसकी सेना और काशी शहर के हजारों की संख्या में दर्शक भी साथ गए थे। और वहां मगर रियासत का बिजली खान नाम का एक पठान था, वो नवाब था, वो भी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य था। वीरदेव सिंह बघेल हिंदू भी, परमात्मा का शिष्य था। वो दोनों ही भाई उपस्थित थे, हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमात्मा के ज्ञान से परिचित हुए थे, दोनों ने परमात्मा को गुरु धारण किया था। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने जिस समय यहां से प्रस्थान करना था वो दिन निर्धारित कर दिया था, जिस कारण से कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक उपस्थित थे। परमात्मा सहस्री रूप पर आकाश को चले गए थे। अब परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाएगी। अब 12 पंथ काल ने चला दिए। परमेश्वर कबीर जी जब प्रथम सतयुग में पृथ्वी पर आए, यहां काल के लोक में आने लगे, तो रस्ते में इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने एक ऐसा स्थान बना रखा जहां ये स्वयं विराजमान रहता है और विशेष वाच करता है, विशेष ध्यान रखता है, दृष्टि रखता है कि कोई इस रस्ते से ऊपर सतलोक की तरफ ना चला जाए। और वहीं पर इसने एक तपत शिला बना रखी है जहां पर ये जीवों को भून कर खाता है। मानव शरीरधारी प्राणियों को उस तपत शिला के ऊपर भून कर, यानी उनको अच्छी तरह तड़फा कर उनमें से ये वासना गंध निकालता है और उस गंध को ये खाता है। मानव का जो अंदर शरीर सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर तो यही रह जाता है। जैसे इसको शराब, इसको सांप लगा हुआ है, श्राप लगा है काल को, 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर के को आहार करने का। कौन से शरीर को? स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में हम जितने भी चटपटे खट्टे मीठे आहार करते हैं, व्यसन करते हैं। आप देखते हो मानुष जीवन का आहार, पशु पक्षियों को देखो आप, एक सात्विक आहार करते हैं कुछ पक्षी, और कुछ एक ऐसे हैं मांसाहारी हैं जो मेंढक मच्छी आदि खाते हैं। और मनुष्य जो है इसका आहार केवल घास फूस फल फ्रूट कद्दू किशमिश खाना ही बनाया है। लेकिन ये काल ये टेस्ट करना चाहता है, ये मन है, मन रूप में ये काल सब में विद्यमान है और इस मन की आदत है कि ये व्यसन करे बिना रह नहीं सकता। ये काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा है। अब देखो शराब बनाई, कैसा जुगाड़ जोड़कर शराब तैयार करी, इस मन काल ने बनवाई, तमाकू तैयार किया, हुक्का हुक्का बनाई या तोब, किस तरह जुगाड़ जोड़कर इसमें है और फिर पीन लग गए, सिगरेट बनाई, बीड़ी बनाई। बताइए इस तमाकू के सेवन से ना तो शरीर पुष्ट होता, हानि अवश्य करता है, लेकिन ये इसलिए करवाता है कि इस सूक्ष्म शरीर में, इस स्थूल शरीर के माध्यम से किए हुए व्यसन और ये आहार सूक्ष्म शरीर के अंदर इनकी सूक्ष्म वासना डिपॉजिट हो जाती है। और जैसे बादाम के ऊपर छिलका होता है, वो छिलका खान का नहीं होता, अंदर गिरी खान की होती है खाने की। तो ऐसे ही ये स्थूल शरीर तो बादाम का छिलका समझो, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर को तपत शिला है, एक बहुत बड़ी टुकड़ी है पत्थर की जो स्वतः गर्म रहती है आध्यात्मिक यानी ईश्वरीय शक्ति से, सिद्धि शक्ति से वो ऑटोमेटिक गर्म रहती है। जैसे सूर्य है, इसको कोई चार्ज नहीं करता और असंख्य युग हो गए, नो का नो सुलग रहा है। ऐसी एक तपत शिला है, उसके ऊपर 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को उस पर प्रतिदिन भूनता है ये काल भगवान। और वहां ये प्राणी चटक पटक करते हैं, बहुत बुरा हाहाकार मच जाती है और फिर बेहोश हो जाते हैं। और जब उनके अंदर से पूरा गंध गर्म होकर के नीचे चला जाता है उसके पात्र में है, फिर इनको वहां से ऐटोमेटिक समय फिक्स कर रखा है। वो सभी प्राणी, वो मानव शरीरधारी प्राणी, क्योंकि इस शरीर से जब ये जीव निकलता है सथूल शरीर से, तब तक इसका ऐसा ही शरीर रहता है, सेम टू सेम इसका शक्ल रहती है, आकृति रहती है। तो वो उसमें भी ये मानव शरीर एज इट इज, चेहरा जैसा आपका इस स्वरूप शरीर का है, ऐसा ही सूक्ष्म शरीर का एज इट इज डिटो कहते ना, एज इट इज कॉपी हो जाती है, डिटो कॉपी। तो उसके बाद ये एक एकदम उड़ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में इनकी लाइन लग जाती है। फिर आगे जैसे जिनके कर्म हैं, संस्कार हैं, उस अनुसार जिसने नरक में जाना नरक में जाओ, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में जाओ, राजा बनना राजा बन जाओ, देवता बनना है देवता बन जाओ, गधा बनना है गधा बन जाओ। वो अलग से संस्कार बना रखे। ये तपत शिला के ऊपर जब ये प्राणी वहां तड़फ रहे थे प्रथम सतयुग में, हाहाकार मची हुई थी। उस समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म स्वयं अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके इस काल के 21 ब्रह्मांड के जुरिडिक्शन में प्रवेश किया, और इसमें प्रवेश होने का एक ही रास्ता, एक ही गेट इसने छोड़ रखे। ज्यों ही परमात्मा वहां आकर खड़े हुए उस तपतशिला के ऊपर, जहां पर 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को भूना जा रहा था, तड़पाया जा रहा था, परमेश्वर की वहां उपस्थिति से उन सभी प्राणियों को एकदम शांति होगी। तपतशिला ज्योंकि तो सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच, उसकी हीट उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही है। जब वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं है, तो एकदम वो सब बैठ गए और सामने क्या देखते हैं, एक चांद सा चेहरा, वो परमेश्वर खड़े हैं। अब सभी प्राणियों को आभास हो गया कि ये भगवान आ गए हैं, तभी तो हम शांत होगी, हमारे कोई जलन रही नहीं अग्नि की। सभी ने करबद्ध होकर कहा, हे प्रभु, हम ये कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने उनको बताया कि ये जो तुम दंड भोग रहे हो, ये तुम्हारा इस काल के लोक में किया हुआ कर्म का दंड नहीं, ये तुमने सतलोक में उस सनातन परम धाम में शाश्वत स्थान में एक ऐसा घोर अपराध किया था जिसका दंड तुम यहां भी भोग रहे हो, और इसके बाद फिर तुम जाओगे 84,00,000 योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनोगे, उसी पाप के कारण तुम यहां फंसकर ये कष्ट उठा रहे। तब परमेश्वर कबीर जी ने अर्थात जोगजीत रूप में उपस्थित परमात्मा ने कहा कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। उन सभी आत्माओं को परमात्मा कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई, और जो हमने अपराध किया था वो याद दिलाया, अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, और पिछले जो भी सचखंड में उन्हें गलती की थी वो एज ए फिल्म, एज ए ट्रेलर वो बैकग्राउंड दिखाई दी। सभी ने अपनी गलती को स्वीकारा और कान पकड़ा, हाथ जोड़े, हे प्रभु हमसे गलती बन गई, घोर अपराध किया हमने, और ये कष्ट जो हमें दिया जा रहा है ये भी कम है उस अपराध के प्रतिफल में, हे भगवान हमें बचा लो काल के जाल से। हमें यहां से ले चलो सतलोक में, या तो दुख ही दुख है। अपनात्मा जब तक ये प्राणी यहां इस माहौल में सेट हो रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई मंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है, और छोटे मोटे भी पति बने बैठे हैं, जैसे कोई आईएएस अफसर है, आईपीएस है, या कोई और अधिकारी है, या वैसे भी कोई जिसका दो रोटी का साधन ठीक है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, या वैसे अपना ठीक गुजारा है, जमीन है, कोई दुकान है, मजदूरी करके भी कोई ठीक अपना गुजारा टाइम पास कर रहा है, तो इस माहौल को वो बिल्कुल अच्छा मान रहा है। अब अच्छा तो मानेगा क्योंकि ये जीव संज्ञा में है और जीव की इतनी ही सोच है। अब पीव आता है, परमेश्वर आता है और हमें वो याद दिलाता है कि इस झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोझ। तो यहां तो परमात्मा कितना ज्ञान देते हैं, हमारा बहुत ही कम गले उतरता है। और जब हम कष्ट में होते हैं, जब हमारे ऊपर आपत्ति होती है, फिर हम स्वीकार करते हैं। जैसा भी उनको मार्गदर्शन दिया जाता है वो स्वीकार कर लेता है। अब जैसे कोई किसी देव की पूजा करता है, जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर बहुत से अब देवों की पूजा करते हैं या अपने इष्ट धामों की पूजा करते हैं, उनको यदि आज ये कहा जाए कि ये साधना तुम्हारी ठीक नहीं है, ये आपको हानि करेगी, मोक्षदायक नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो वो मानता नहीं। वो क्या सोचता है, उसने कैसा अपना पैमाना बना रखा है आध्यात्मिक लाभ को तोलने मापने का। अब जैसे पिछले संस्कार पुण्य के आधार से आज किसी प्राणी की अच्छी पोस्ट है, अच्छी संतान है, और संतान की भी अच्छी नौकरी सेट होगी है, और उनका भी अच्छा गुजारा है, तो वो ये मान बैठा है कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि 50% अभी भी आस्तिक व्यक्ति हैं, और वही 50% आस्तिक व्यक्ति कहीं ना कहीं परमात्मा के लिए कोई ना कोई अवश्य साधन करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती है। जो नास्तिक हो गए हैं उनको कोई याद दिलाने वाला ही नहीं है, और वो थक चुके हैं कि भगवान है नहीं, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध करके आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहे, जिस कारण से वो नास्तिक हो गए। आस्तिक व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम जो भी पूजाएं करते हैं, जैसे किसी ने हनुमान का व्रत रख दिया, मंगलवार का 125 का प्रसाद बांट दिया, 6 महीने में इष्ट धाम पर मत्था टेक आए, जन्माष्टमी का त्योहार मना लिया, होली और दिवाली में नाच कूद लिए, और एक गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, या कोई और छोटे मोटे स्तोत्र 2-4 बार कर लिए, वो ये सोच रहा है कि ये सुख मुझे इनसे प्राप्त हो रहा है। और फिर उन पर आपत्ति जब आ जाती है और उनकी दुर्गति प्रारंभ होती है, वो जो साधना कर रहा था उससे तो कोई लाभ हुआ नहीं, फिर वो कहां जाते हैं, किसी संत या किसी स्थान पर जाते हैं जिसके विषय में ये सुना हुआ होता है कि वहां जाते सुखी होता है। अब वहां भी मत्था टेकने जाते हैं, कितना जाटी के डंडी का धागा बांधन जाते हैं, अब वहां भी जब वो धक्के खा लेते हैं, कोई आराम नहीं होता और दुर्गति चरम सीमा पर होती है, उस समय कोई संत उनको मिलता है और वो फिर कहता है कि तुम ये साधना त्यागनी पड़ेगी, और जैसे हम बताएंगे ऐसे करना होगा तो वो तुरंत मान जाते हैं, जैसा आप कहोगे वैसा ही कर लेंगे। क्योंकि जिन पूजाओं को वो फाइनल मान रहे थे, सही मान रहे थे, जब तक पूर्व जन्म का शुभ संस्कार साथ रहा तो मौज माच रही थी, और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो ली, आगे चार्जर ठीक लगा नहीं, यानी शास्त्र अनुकूल साधना मिली नहीं, और पूर्व जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार इकट्ठे थे, वह बैटरी चार्ज थी, अब वो चार्जर ठीक ना लगने से वो पूर्व जन्म की बैटरी डिस्चार्ज होगी, वो पुण्य समाप्त हो गए। और जब तक वो बैटरी चार्ज थी इन्वर्टर की, चार्जर बेसिक मतलाओ, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही होती है, ट्यूब भी जग रही होती है, पंखा भी चल रहा होता है, बस नो प्रॉब्लम। और किसी बुद्धिमान को पता है कि तुम चार्जर लगाओ, तुम्हारा चार्जर नहीं लगा है, वो मान जाते हैं तो उनकी बैटरी ठीक चार्ज होती रहती है, फिर आपत्ति नहीं आती समय आने पर। और जो नहीं मानते हैं वो कहते हैं नहीं ठीक है, हमारी बैटरी ठीक चल रही है, तो वो अनजान है। और जब वो पूर्व जन्म के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद एकदम जैसे इन्वर्टर की बैटरी जब डिस्चार्ज होगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, ना ट्यूब चले, ना पंखा चले, ना और कोई कार्य हो। तो परमेश्वर कबीर जी ने जब वहां उन तपतशिला पर जल रही उन आत्माओं से कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ गुरु भी आए हैं, अखां जी वो खड़े होना जरा, वो खड़े हो गए सैकड़ों की संख्या में, वो नकली गुरु दुनिया ने भ्रमित कर रहे थे। आप जी किस इष्ट की पूजा करते थे, परमेश्वर ने पूछा। एक कहता जी मैं हनुमान जी की पूजा करता था। हनुमान जी ने कब कहा अपनी पूजा कराने को, अरे वो तो भगत थे, वो तो स्वयं पूजा करते थे भगवान की, और कोई भगत अपनी पूजा करवाने को नहीं कहेगा, वो कहेगा तो भगवान की पूजा के लिए ही आपको हिदायत दे सकता है। और यदि कोई भक्त अपनी पूजा कराता है वो भक्त नहीं, वो दुष्ट है। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा कर लो, तुम तो दंगताना कर रहे हो उसके साथ। वो क्या कहता है, जी हमने तो ऐसा सुना था, वो गुरु कहता है, वो आचार्य कहता है नकली, हमने तो ऐसा सुना था कि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, हनुमान जी की पूजा करने से भगवान शिव की पूजा हो जाती है, और हनुमान जी के हृदय में श्री राम और श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी विद्यमान हैं, उन्होंने अपना सीना खोल के दिखाया था, तो हनुमान की पूजा करने से श्री राम की यानी विष्णु की भी पूजा हो जाती है। फिर परमात्मा ने पूछा और क्या डले डोया करता तू, और भी बता दे। कि गीता जी का मैं नित पाठ किया करता और औरों को भी समझाता था कि गीता जी का पाठ करते ही रहना चाहिए। अब परमेश्वर ने कहा रबले पुरुष, अब गीता जी में 18 अध्याय हैं, और यदि हनुमान जी की पूजा से ही विष्णु जी और शिव जी की पूजा का लाभ मिलना होता तो उन 18 अध्याय का ज्ञान देने की परमात्मा को क्यों आवश्यकता पड़ी। दो शब्द कह देता हनुमान की पूजा कर लियो और विष्णु और शिव जी की तुम्हारी वाय पूजा हो जाएगी, है भले आदमी। अब तुझे क्या मिला यहां पर, अब भुगत रहा है तू, और अब क्या होगा तेरा, नरक में जाएगा सीधा, तेरी कोई चार्ज भक्ति ठीक नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध साधना तू कर रहा था। अब परमेश्वर ने उनको बहुत लताड़ा, लताड़न का मतलब है ज्ञान से समझा कि तुमने अपना जीवन बर्बाद किया, लाखों व्यक्तियों को डबो दिया, ये दंत कथा लोक वेद सुना सुना के शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण तुमने किया और अपने अनुयायियों से करवाया, जिस कारण आज तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है और आगे देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। परमात्मा ने बताया कि तुम्हारे इतिहास में, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में उसके पुण्य और पाप कोड वर्डों में अंकित होते। परमात्मा ने उसी समय अपनी शक्ति से उसके किए हुए कर्म सामने दिखा दिए, ये देख अब तू क्या बनेगा, गधे की योनि में जाएगा यहां से सीधा, अब बनेगा तू आचार्य। ऐसे ही एक दूसरा खड़ा था, कहा जी मैं तो वेदों अनुसार साधना करता था। वेदों अनुसार क्या साधना करता था कि गायत्री का जाप करता था, गायत्री मंत्र का जाप करता था मैं। अब परमात्मा ने कहा कि गायत्री मंत्र क्या चीज है, कि ये ऋषियों की खोज है, ऋषियों ने अपने अनुभव से इसको खोजा है। अब परमात्मा बोले बुद्धू तू बात तो बनाओ, मैं वेद पढ़ा करता, इतने कह खेगा पता नहीं गायत्री मंत्र क्या है। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है, उसमें ओम शब्द नहीं है और ना ही इसके साथ ओम शब्द जोड़ना चाहिए। आप ओम शब्द लगाकर इस भूर भव सव तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव से धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र के साथ यदि ओम शब्द लगाते हो तो इसको भी निष्क्रिय कर रहे हो, परमात्मा का अपमान कर रहे हो। ओम शब्द नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ओम नाम है ब्रह्म का, ओम मंत्र है ब्रह्म का, और ये भूर भव स्व जो महिमा है ये पूर्ण परमात्मा की, परम अक्षर ब्रह्म की। अब जैसे प्रधानमंत्री जी को आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो और शुरू में लिख दे मुख्यमंत्री जी और उसका नाम लिख दे, वो कागज में पाट देंगे कलर वहां पर कि तो मुख्यमंत्री की तरफ है, नीचे बेच दो इसको। तो ओम नाम इस मंत्र यजुर्वेद अध्याय 36 के मंत्र 3 के साथ नहीं लगाना चाहिए। इसको कहते हैं जो खचड़ा ज्ञान, ये लोक वेद दंत कथा शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण आपको दिखाते हैं। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का 3 मंत्र में कहीं ओम नहीं लगा इसमें, ये देखिएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 मैर सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से ये छपी है, प्रकाशित है और इसके अनुवाद करता है महर्षि दान सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक, ये इसके मुद्रक हैं। अब 36वां अध्याय का 3रा श्लोक आपको ये देखिए, ये है 36वां यजुर्वेद भाषा वर्ष, ये है 36वां यानी 36वां अध्याय है इसका, यहां पर ये 3रा मंत्र है। भूर भवय सव तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योने प्रचोदयात्, इसमें ओम शब्द नहीं है। भूर भवय सव तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योने प्रचोदयात्, इस अनाड़ी ने केस इसका अनुवाद देखो केस कैसा कर रखा है सिद्धानंद अज्ञानी ने, इसका क्या अनुवाद किया है, हे मनुष्यो जैसे हम लोग भू माने कर्मकांड की विद्या, भू है उपासना कांड की विद्या और सव है ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के हमारी धारणवर्ती बुद्धियों को प्रेरणा करे उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें। अपुण आत्मा इसका अर्थ तो कुछ और बनता है लेकिन ये प्रसंग दूसरा चल रहा है। यही दानंद अज्ञानी महर्षि दानंद अपना अनुभव इसने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक में लिखा है, वहां इसने इस गायत्री मंत्र का अनुवाद करते समय कहा कि भू भवय सवय, ये तीन मंत्र तो तैत्रीय अरण्य से लिए हैं मैंने, और शेष के बारे में कोई जानकारी नहीं इसको। तो ऐसे ही सब के अंदर लोक वेद फीड था। इस गायत्री मंत्र के बारे में ये खासकर आर्य समाज के आचार्यों ने ऐसी भ्रमणा फैला दी थी कि महर्षि दयानंद की खोज है ये गायत्री मंत्र, इसने अपनी खोज ढूंढी है सदग्रंथों से कहीं कहीं से, जब ये गायत्री मंत्र बनाया है। उसने स्वयं पता नहीं, वो वेदों का विद्वान कहा था, और उसको ये नहीं पता कि वेद में वो कौन से मंत्र में लिखा ना, वहां लिखता कि यजुर्वेद के 36वें का तीसरा वो मंत्र है, इसमें ओ मंत्र नहीं है, ओ मंत्र नहीं लगाना इसके साथ। फिर परमात्मा ने कहा कि मान लीजिए आप गायत्री मंत्र जाप करते हो, और वो कहता था जी मैं लाख मंत्र जाप किए मैंने गायत्री के, ऐसा मैंने अपना वो बना रखा था 1,00,000 मंत्र गायत्री के जाप किए एक विशेष अनुष्ठान में, बाकी तो करता ही रहता था। अब परमात्मा ने समझाया कि भले बुद्धू आदमी तू, अब जैसे वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की महिमा लिखी हुई है, उसके गुण लिखे हैं, जैसे कि कहीं पर बिजली इस इलेक्ट्रिसिटी की विशेषता उसके गुण लिखे हो, उन गुणों में क्या लिखा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कनेक्शन लेने वाले को क्या क्या लाभ होते हैं, वो पंखा चलेगा, ट्यूब जगा देगी, जगमग कर देगी घर को, रोशनी देता है, देती है बिजली, पंखे चला देती है, कूलर चला देती है, दूध बिलो देती है, रड़क देती है, मक्खन बना निकाल देती है, और जमीन से जल निकाल देती है, आदि आदि उसकी उसके गुण लिखे हैं। अब उन गुणों को कोई व्यक्ति 1,00,000 बार पढ़ ले, जाप कर ले, बार बार उसकी आवृत्ति करता रहे, रेपिटेशन करता रहे, रिपीट करता रहे, क्या लाभ होगा? उससे ये लाभ होगा कि उसको बिजली के गुणों का ज्ञान हो जाएगा कि बिजली ऐसा ऐसा करती है। लेकिन वो बिजली ऐसा करती कैसे है, जो गुण बिजली के लिखे हैं वो प्राप्त कैसे होंगे, उसके पढ़ने मात्र से नहीं होंगे, उसमें लिखे हुए अनुसार करने से प्राप्त होंगे, वो कैसे होंगे? आप जी ने बिजली का कनेक्शन लेना होगा, मीटर लगवाना होगा, उसके लिए प्रोसीजर सारा अपनाना होगा, और फिर वह फॉर्म डिपॉजिट कराओ, उनका जो टैक्स वैक्स है वो भरो, और फिर कनेक्शन मिल जाएगा, फिर वो बिजली लाभ देगी। यदि उन बिजली के गुणों को गाता रहे, पढ़ता रहे, क्या वो बिजली लाभ दे देगी? कभी नहीं। यदि आप जी इस गायत्री मंत्र को 20,00,000 बार बोलते रहो, क्या प्रभु तुम्हें लाभ दे देगा? उसमें जो लिखा है कि उस परमात्मा का ध्यान करो, उस परमात्मा की भक्ति करो, केवल एक मंत्र से परमात्मा की महिमा स्पष्ट नहीं होती, जैसे कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है इस वेद ज्ञान दाता ने। जो गीता ज्ञान दाता है वही वेद ज्ञान बोल रहा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इस ज्योति निरंजन काल के अंतःकरण में ये पांचों वेद फीड कर दिए थे। इसने पांचवा वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विशेष व्याख्या थी। इसने इस डर से उसको नष्ट कर दिया कि कहीं इनको अपने पिता का पता लग जावे, अपने मूल स्थान का ज्ञान हो जावे, और फिर यहां से भाग जाएंगे। पुण्यात्माओं, आपके जिस दिन ये विशेष विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहां और स्थान है जहां रहते थे, और वहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, और कोई काम नहीं, और कभी कोई कष्ट नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, तो उसने यहां ना रहे पृथ्वी पर कोई भी। एक भगत कहने लगा जी यदि सभी सतलोक की भक्ति कर लेंगे परमात्मा की और सभी सतलोक चले गए सारे, तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? या तो खाली हो जाएगी, तो पता यहां तक ठेका ले रहे हम, ये खाली हो जाएगी तो कौन रहेगा? अरे ये इतने पत्थर घूमन लाग रहे, ये 8 ग्रह ऊपर घूमन लाग रहे, सारे खाली पड़े पत्थर, इन पृथ्वी से तो कई कई हजार गुना कई कई गुणे बड़े हैं। एक पत्थर यो भी घूमता रहेगा, हमने के ठेका ले रखे हैं धक्के खान का, और हम वहां चलेंगे जहां पर सारी सुविधाएं, और वहां फिर कभी मृत्यु नहीं हो। यहां तो मृत्यु डेफिनेट होगी, आज जिन सुविधाओं को अपनी मान रहा है ये तेरे पास नहीं रहेंगी। आज से तू कोई किसी अच्छी पोस्ट पर है या कितना फैक्ट्री का मालिक है, कल मृत्यु होगी, अगले दिन तू गधा बनकर वहीं खड़ा पाओगे उस फैक्ट्री का पिछले पास है। तो क्या सुविधा है ये तुम्हारी? तो फिर ये जब आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये गॉड गिवन जो है ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये, कि उन्होंने अपने स्वार्थवश सुखी महिमा बना रखी हो किसी की। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि वहां ऐसा ऐसा है, यहां तो मृत्यु होगी और जन्म भी होगा आपका, जन्म मनमाने का देखा हो गया। फिर ये सुविधा कहां गई आपकी, जिनको आज तू देखकर प्रसन्न हुआ बैठा है? और वहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जरा जरा मरण नहीं होता। वहां जन्म तो एक बार होगा, लेकिन फिर ना वृद्ध अवस्था होगी सतलोक में और ना फिर मृत्यु हो। और यहां दोनों दुख, महान दुख यही है, हम इतने ढीठ हो गए इस काल के लोक में, चाहे हमारे दोनों टांग कट रही हो और चाहे एक हाथ भी कट गया हो, हम फिर भी जीवन चाहते हैं। यदि यहां बुढ़ापा ना हो और मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो रहे हैं, हमारे ऊपर कितना कष्ट आया रो, हम को नहीं डगे यहां तक, हम नहीं जाना चाहते। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि वहां सतलोक में तुम्हारा जरा नहीं है, जरा वर बुढ़ापा और मरण नहीं। गीताजी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म अर्थात काल कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, कौन सा ज्ञान? के तत्वदर्शी संतों की खोज करो, 4:34 श्लोक में वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है उसका ज्ञान बताएगा, उनसे सुन। और तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा जो ये दास बता रहा है? फिर क्या बताया है कि इस ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म को जानते हैं, सारे आध्यात्मिक कर्म से भी परिचित हैं। जैसे कल आपको ज्ञान सुना था सत्संग में कि यहां पर हम संस्कारवश, जैसे आज हमने किसी के साथ धोखा कर दिया तो अगले जन्म में वो आपका लड़ियार बनेगा, जैसे वो बेटा बनकर आ गया छोटा भाई, जिसको उन पति पत्नी ने यानी भाभी और भाई ने विष से मरवा दिया था, अगले जन्म पुत्र बनकर आ गया और आधी संपत्ति को उपचार पर नष्ट करवा दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो जो है उनका वंश भी नष्ट हो गया, और आगे कष्ट क्या हुआ होगा उसका तो कहना ही क्या। तो फिर वो जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, आध्यात्मिक सद कर्मों से परिचित हो जाएंगे, वे साधक फिर ऐसा जुल्म नहीं करेंगे, वो ऐसा पाप नहीं कर सकते। उनको विष दिखाई देगा, जैसे किसी बोतल में विष रखा हो और आपको पता है विष है, आप उसका हाथ भी ना लाओ और बल्कि और ऊंचे स्थान पर ऐसा रख दोगे, यानी किसी कारणवश कहीं रखा भी है किसी के, तो वो उसको छूने नहीं देगा अपने बच्चों को भी। और अनजान बालक यदि उसको वो मिल जाता है, खोल के मुंह के लाके देखता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हम जो गलतियां कर रहे हैं, रिश्वत लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं, हम विष खा रहे हैं। इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत जो सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं, जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वे उस तत्वर्ण से परिचित हो चुके हैं और सब अध्यात्म कर्म से और सभी अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। तो पुण्यात्माओं जो प्रसंग चल रहा है, जैसे हम सतलोक में जाएंगे और वहां जरा और मरण नहीं है, जरा मीन बुढ़ापा और मरण मीन मृत्यु, सबसे बड़ा कैर जीव पर ये और न्यारा है। बुढ़ापे में सारी आपदाएं आती है प्राणी पर और मृत्यु सबसे गुंडी। अब से हम कितना कष्ट पा रहे हैं, कितने वृद्ध हो गए हैं, हम मृत्यु नहीं चाहते और बुढ़ापा पसंद कति नहीं करते और दोनों कंपल्सरी यहां पर। ऐसा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम उस लोक से आए हुए हैं जहां पर ये दोनों नहीं थे और वहीं हम चले जाएंगे तो ये दोनों समाप्त होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। अब परमात्मा ने बताया कि तुम गायत्री मंत्र का जाप करते हो और गायत्री मंत्र कंप्लीट ज्ञान नहीं है उस परम पिता के पाने का, उसकी महिमा है, ये उसी की महिमा का एक मंत्र है, अंश है। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर संत हो वही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार उस परमेश्वर ने उन तपतशिला पर, वहां पर तो वह बैठे हुए थे, करबद्ध थे और उनको ये भी मालूम था कि हमने जो जो साधनाएं की उनसे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। तो परमेश्वर ने कहा, वो जो ये कहता था कि मैं वेदों अनुसार साधना करता हूं, ओम नाम का जाप करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, तो परमेश्वर ने कहा कि जो साधना आप कर रहे हो ओम नाम का जाप और वेदों अनुसार और गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र से आपको कोई लाभ नहीं, क्योंकि सदग्रंथों के जो पाठ के करने से, सदग्रंथ पवित्र वेद पवित्र गीता जी ये पाठ करने के यानी स्वाध्याय करने के सदग्रंथ है, तो इनके करने से आपको ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। अब जैसे स्वाध्याय करते हैं, चाहे वेदों के मंत्रों को 10-20 मंत्र प्रतिदिन पढ़ लिए या कोई गीता जी का एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ कर लिया, ये सब अध्याय कहलाता है, ये ज्ञान यज्ञ है। ये वैसे पांच यज्ञ करनी होती हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ ज्ञान है। ये पांचों यज्ञ भी आप कर लोगे, एक यज्ञ से भी लाभ नहीं होगा, जैसे कोई हवन हवन करके राजी हो रहा है, नहीं, पांच यज्ञ भी आप कर लोगे और आपके पास सत भक्ति जाप करने का मंत्र नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, वो मंत्र ठीक नहीं है, तो भी आपकी पांचों यज्ञ यूजलेस होगी, व्यर्थ हुई। कैसे? जैसे किसान खेत में बीज बीजे नहीं और खाद और पानी डालना शुरू कर दे, गेहूं बीजा नहीं, खाद और पानी डालना शुरू कर दिया, सिंचाई शुरू कर दी, तो क्या होगा? उसमें खरपतवार उग जाएगा और वो पशुओं का काम तो आ सके घास फूस, बाकी उसका मूल उद्देश्य नहीं रहा। यानी बीज किस लिए, गेहूं किस लिए बीजता है किसान? के अपने बच्चों का और उसका जीवन सुरक्षित रहे, भूखे ना मरे। और बीज बीज के, गेहूं बीज के फिर खाद पानी डाले तो उसका लाभ गणा हो। यदि बीज बो दिया और खाद पानी नहीं डाला तो भी यूजलेस है। कहने का भाव उदास का ये है कि आप जी यदि कोई एक यज्ञ भी कर रहे हैं, जैसे खाद डाल दिया और जल डाला नहीं, तो भी यूजलेस है। तो ऐसे ही एक हवन यज्ञ के ऊपर का टच जोड़ रहे हैं, कई तो स्वाहा स्वाहा सारा दिन एक घंटा लगे रहे, और वो चार ये गोर रहेगी, खाद डाल दिया जल नहीं डाला तो भी जड़ गई खेती। तो ये अल्पज लोगों का, नीम हकीम नकली गुरुओं का ये मार्ग शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में 24 में स्पष्ट किया है कि उनको कोई लाभ नहीं होता। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। अब जैसे बीज भी बीज लिया, गेहूं के स्थान पर भांग बो दी और खाद पानी शुरू कर दिया, तो भांग भांग ही होगी उसमें। ऐसे ही परमात्मा उसको समझा रहे हैं, जो कहता मैं वेदों अनुसार साधना करता हूं, परमेश्वर ने बताया कि आप ओम नाम का जाप करते थे हां जी, और आप गीता जी भी पढ़ते थे हां जी, गीता जी उसने खुद बोलकर बताया उस साधक ने, उस गुरु ने, दूसरे आचार्य ने, जो कहता मैं वेदों अनुसार साधना करता हूं, कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुद ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए उसका जाप करता हुआ जाता है सयाति परमाम गतिम। तो वो बताता है कि ओम नाम का जाप करने से परमात्मा की परम गति प्राप्त हो जाती है। परमेश्वर ने पूछा कि ओम नाम के जाप करने वाले को कौन सी गति प्राप्त होती है, कहां जाता है, कि ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। परमेश्वर ने कहा कि 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी जन्म और मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं है। और गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, आगे भी होंगे। और गीता ज्ञान दाता ने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी साधना को भी अनुतमाम अति अश्रेष्ठ कति घटिया बताया है। ये नकली गुरु के हैं, यहां अनुतम का अर्थ जिससे उत्तम और ना हो। अरे भले आदमियों, तुमने अर्थों के अनर्थ भी गुमा कर दिए, सारा ज्ञान गुमा दिया। एक उत्तीर्ण होता है, उत्तीर्ण माने पास यानी सफल, और उसका पर्यायवाची होता है अनुतीर्ण। यदि कोई बालक फेल हो गया हो और उसके आगे लिखा हुआ है अनुतीर्ण, और वो आके कहे अपने घर वालों को कि मैं ईसा पास हो गया हूं, जिस तक आगे कोई पास नहीं, यानी कति पास हो गया, सबसे बड़ा पास हो गया मैं, तो बेशक मूर्ख बना ले, लेकिन वो फेल हो चुका है। यही सती थी इन अज्ञानियों की, गीता अनुवादकर्ताओं की है। अनुतम का अर्थ इन्होंने अति उत्तम कर रखा, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ऐथरा गजब हुई। और क्या बताते हैं कि जिस गति से ऊपर कोई गति ना हो, कोई और उत्तम गति ना हो किसी की, वो सबसे उत्तम गति भगवान बताता है, मेरे वाली सबसे उत्तम गति में व्यस्त है। यदि इस गीता ज्ञान दाता वाली साधना ही अति उत्तम होती तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को नहीं कहता। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये नहीं कहता कि तत्वदर्शी संत बताएगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जड़ से लेकर पत्तों तक, और फिर उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधकार को हटा कर काट कर, अर्थात समझ कर, तत्व ज्ञान से समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक लौट कर वापस नहीं आते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। और जिस परमेश्वर ने सौर्य ब्रह्मंडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष की कंस्ट्रक्शन की है, जिसका रचना की है, और उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। गीता ज्ञानदाता अपने को भी नहीं कहता, कहता उसकी करो। फिर उस ब्राह्मण ने जो कहता मैं वेदों अनुसार साधना करता हूं, ऋषि ने कहा कि भगवान गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति कर और मुझे ही प्राप्त हो, मेरे में मन वाला बन। ये तो स्पष्ट कहा कि मेरी भक्ति करो, तो परमात्मा ने कहा, उसने ये कहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मरण तेरे भी रहेंगे, मेरे भी हैं, और आगे भी सदा जन्म मृत्यु वाले कष्ट में रहेंगे, यहां शांति नहीं हो सकती, और युद्ध भी करना होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि उठ और युद्ध कर, मेरा स्मरण भी कर। तो युद्ध करने वाले को शांति नहीं हो सकती, इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से की में? 8वें अध्याय के 1 मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से कि भगवान आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रित होकर के जो जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस तत्वर्म को जान चुके हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से परिचित है। तो किम तत्वर्म? 8वें अध्याय के 1 मंत्र में पूछा अर्जुन ने भगवान से, गीता ज्ञानदाता से। तो उसने गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में गीता जी ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिसके विषय में 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष गीता ज्ञानदाता, ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। उत्तम पुरुष तो अन्य 17वें श्लोक में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म की साधना गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्था है। इस ओम तत्सत के साथ हरि नहीं लगाना चाहिए, ये शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है, इस मंत्र का विनाश हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्था है। ब्रह्मणे माने परम अक्षर ब्रह्म, सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। तत् और सती सांकेतिक है, ओम तत्सत ये कोई जाप नहीं है, ये तत् अक्षर पुरुष का जाप है, और ओम ये सर्व पुरुष का है ब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है, परम अक्षर पुरुष का है। ये तत् और सत सांकेतिक है, ये दास बतावेगा, ये कोड वर्ड है। इसलिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ रखी है गीता ज्ञानदाता ने 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में। तब परमेश्वर ने कहा उस अनाड़ी से कि तूने 8वें अध्याय का 7वां और 5वां श्लोक तपढ़ लिया, अब 8वां 9वां 10वां 8वें अध्याय का ये भी तो गीता जी में लिखा है, इस पर जानना गयात्रा मूर्ख। इसके इसमें क्या लिखा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है, उस देव पुरुष की जो साधना करता है, भक्ति करता है, उस पर तत्वदर्शी संत से की शरण में जा करके उसे नाम प्राप्त करके, तो भक्ति की शक्ति से उस मंत्र के जापों की कमाई से वो उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। उसकी शरण में जाने के बाद फिर सनातन परम धाम प्राप्त होता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तब वो अज्ञानी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि हे प्रभु हम तो बिल्कुल अंधे हैं, ज्ञानहीन हैं। परमात्मा ने कहा कि तूने अपना जन्म बिगाड़ा, अपना मनुष्य जीवन बर्बाद किया, और लाखों व्यक्तियों करोड़ों यानी हजारों श्रद्धालुओं को और गुमराह करने का पाप भी सिर पर उठा लाया।